सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्रमणन्तमणिन्दियं मणुवममपत्थसोखमणवज्रं केवलपहोहनिज्य दुन्नयतिमिरञ्जिनं नमः। धौला का मंगलाचरण हमने कल शुरू किया था। यहाँ शुरुआत में मंगलाचरण कहते हैं तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ सिद्धों को नमस्कार किया है, या सिद्ध हुए ऐसे जो जिन भगवान उनको नमस्कार किया है, तो वो सिद्ध कैसे है तो उसके हमने विशेषण देखे थे। ये जिनेन्द्र भगवान कैसे है तो पहला विशेषण है वो सिद्ध है, दूसरी बात कही थी वे अनंत है, दूसरे पेज पर लिखा है ना, इसको हमने पढ़ा था। तीसरे पेज में आया अनिंद्रिय है, फिर अनुपम है, आत्मस्थ सुख, आत्मा के ही जो आत्मा में से जो सुख उत्पन्न होता है ऐसे आत्मस्थ अनंत सुख से विद्यमान है। अनवद्य है, अवद्य ने पाप दोष, अनवद्य ने पाप से या दोष से रहित निर्दोष जिसको कहते हैं, यानी पूर्ण वितरागी। उसके पश्चात हमने देखा था केवल प्रभौग निर्जित दुर्नय तिमिर, उसका अर्थ क्या किया था कि केवल ज्ञान से जो विभूषित है, और उन्होंने क्या किया था निर्जित दुर्नय तिमिर, दुर्नय तिमिर ने दुर्नय मिथ्या एकांतवाद जो है उस रूप जो अंधकार है, उस अंधकार को जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभा पुंज से जीत लिया है ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान। यहाँ तक तो हमारी बात हुई थी। अब जो अगला विशेषण है जिन, उसको हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5 नीचे से चौथी लाइन। मोह या मिथ्यात्व आत्मा का सबसे अधिक अहित करने वाला है, इसके वश में होकर ही यह जीव अनादि काल से आत्म स्वरूप को भुला हुआ संसार में भटक रहा है। ये मिथ्यात्व जो है, अज्ञान जो है, भ्रमणा जो है जीव की, अपने ही स्वरूप के बारे में अपना स्वरूप नहीं पहचानता है और इस अज्ञान के कारण वो दुखी हो रहा है, और उसी के कारण निरंतर कर्मबंध करते करते अनादि से ही संसार में भटक रहा है। जब इस जीव को उपदेश आदि का निमित्त मिलता है, देखो जब ये अभी अपने को पहचानेगा कब, क्योंकि अनादि से ही जो शरीर प्राप्त हुआ था उस शरीर में यह मैं हूँ ऐसी उसकी मान्यता बिना सिखाए चली थी, तो अपने आप उसको समय दर्शन होने वाला नहीं है। वहां तो ज्ञानी गुरु का निमित्त होगा, ज्ञानी गुरु के कारण उसको समय दर्शन नहीं होने वाला है, सम्यक दर्शन होगा उसकी अपनी स्वयं की योग्यता से। परंतु जब उसको होगा उसके पहले उसका स्वरूप उसको ख्याल में आने के लिए वहाँ ज्ञानी का निमित्त होगा, इसलिए क्या कहा उपदेशादि का निमित्त मिलता है, और उससे स्व क्या है, पर क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, क्योंकि हम स्व या नहीं है, हमारे रिलेटिव्स ये हम और हमारे रिलेटिव्स, और ये दूसरे हैं, ये अन्य जीव है, ये हमारे पड़ोसी है, वो हमारे दूर के रिश्तेदार, इसी में हम वो भेद करते हैं। परंतु इसमें स्व कौन है और पर कौन है, हित किस में है, अहित किस में है, इसका बोध करके आत्मकल्याण की ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है। ये पंचलब्धि में तो हमने इसको विस्तार से देखा था, अब यहाँ भी बातें आएगी सब। परिणामों में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, विशुद्धि लब्धि में हमने देखा था ना, उसकी विशुद्धि बढ़ती रहती है, तो परिणामों में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है कि वह केवल अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए दूसरों के न्याय प्राप्त अधिकारों को छीनने से ग्लानी करने लगता है। दोपहर में भी गुणस्थान की क्लास में भी बात चल रही है कि सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है, तो अन्याय, अनीति और अभक्ष्य भक्षण का त्याग। तो यह जो दूसरों की जो न्याय प्राप्त संपत्ति है या कोई भी अधिकार है उसको छीनने की जो भावना है वो इसको नहीं रहती है, यानी अन्याय से इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वैसे उसको विचार ही नहीं आते, क्यों? पवित्रता भी बढ़ रही है परिणामों में। तो अपने कुछ स्वार्थ हेतु दूसरों की जो न्याय प्राप्त अधिकार है, पैसा है या अन्य कोई भी चीज है, उसको वो छीनने के उसके भाव ही नहीं होते। उसके पहले बांधे हुए कर्म हल्के होने लगते हैं। ये सब अभी एक 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 बात याद आएगी पंचलब्धि वाली। ग्लानी यानी ग्लानी करने लगता है, यानी नहीं वो छीनने के भाव नहीं आते। ग्लानी यानी उसके प्रति निरुत्साह, यानी ऐसे भाव उसको अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगना, ग्लानी आना अच्छे नहीं लगना।
यहाँ ग्लानी का अर्थ निरुत्साह लेना, यानी पहले उसमें रुचि रखता था, अभी उसमें उसको रुचि नहीं रहती है, उसके प्रति कंटाल आता है, आलस आता है या उद्विग्न हो जाता है कि ये बात मेरे से नहीं होनी चाहिए, ऐसी खटक उसको जागृत हो जाती है।
उसके पहले बांधे हुए कर्म हल्के होने लगते हैं। हल्के होने लगते हैं क्या? हमने पहले देखा था कि उसके अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है, अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना घटते जाना, घटते जाने ने अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग रहना। पहले पूर्व अवस्था में उसने कुछ अप्रशस्त कर्म जितने बांधे थे उसका अनुभाग, फल देने की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। और क्या होता है, नवीन कर्मों की स्थिति भी कम पड़ने लगती है। अब जो नया कर्म बांधेगा वो कम स्थिति वाला बांधेगा। इसको ये लब्धि के प्रकरण में अगर हम देखेंगे तो प्रायोगिक लब्धि में जीव आता है तो पूर्वी की स्थिति घट जाती है, अंत कोड़ा कोड़ी रहती है, और नई स्थिति भी अंत कोड़ा कोड़ी इतनी ही बनती है, कम बनते। सांसारिक कार्यों को करते हुए भी उनमें उसे स्वभावतः अरुचि का अनुभव होने लगता है। पहले स्वच्छंद रीति से वर्तता था, अब उन्हीं का कार्य तो करता है, व्यापार भी चलता है, घर का कार्य भी चलता है, पर अभी ऐसा ही कहां मैं फंस गया ऐसा लगता है, उसमें अरुचि वर्तती है। क्यों प्रेरणा वे जो अंगीकार हुआ कार्य तो चलता रहता है, घर शादी ब्याह हो उसमें भी, वो बाहर से तो ऐसा दिखेगा तो उसमें भी, अभी तो ये समय दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, उसके पहले की बात चल रही है, परंतु उसमें वो जो तीव्र रुचि जो है वो उसमें नहीं रहती, उसको अरुचि सी हो जाती है। तब कहीं समझना चाहिए कि यह जीव सम्यक दर्शन के सन्मुख हो रहा है, अभी हुआ भी नहीं है, हो रहा है, उस तरफ उसके चल रहा है उसके। फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाए हैं वे सम्यक दर्शन करो, उसको लिखना उसमें। वे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समर्थ कारण नहीं है। हमने देखा था कि सम्यक दर्शन होने के पहले पांच लब्धि नियम से होती है, याद है किसी को? हाँ बोल। क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। तो ये प्रायोगिक लब्धि तक की अभी इन्होंने चर्चा की, उसको नाम नहीं दिए, परंतु यहाँ तक तो अभव्य जीव भी अनंत बार आ सकता है, और भव्य जीव भी यदि यहाँ तक ही आए और आगे का पुरुषार्थ नहीं हुआ तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए क्या कहा, ऊपर जो अभी हमने जो बातें बताई इन्होंने जो लिखी है, इतने होने मात्र से क्या लिखा है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समर्थ कारण नहीं है, यानी इतने होते हुए सम्यक दर्शन होगा ही ऐसी बात नहीं है। तो क्या होगा, इनके होते हुए, यानी इनके बिना नहीं लिखा, इनके होते हुए, यानी ये चार लब्धि पूर्वक आगे की लब्धि अगर प्राप्त होगी, कौन सी, यदि मिथ्यात्व या मोह का उपशम करने में समर्थ ऐसे अधकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण रूप परिणाम होते हैं। यानी जीव को यदि ये करण लब्धि के परिणाम होगे तो समझना चाहिए कि यह जीव सम्यक दर्शन को पा सकता है। पा सकता है, वो अंतर्मूर्त में नियम से सम्यक दर्शन पाएगा ही। करण लब्धि में एंटर हुआ तो छोटा अंतर्मूर्त, बहुत बड़ा नहीं है वो, तो उतने काल में उसको सम्यक दर्शन नियम से होगा। इनके बिना नहीं, इनके बिना इन्हें ये जो तीन करण परिणाम कहे हैं उसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इन परिणामों में ही मिथ्यात्व के नष्ट करने का सामर्थ्य है। वो किस तरह से नष्ट होगा वो बातें आगे भी आएगी और हमने पहले भी देखी है। इस तरह जब यह जीव अधकरण रूप परिणामों को उल्लंघन करके अपूर्वकरण रूप परिणामों को प्राप्त होता है तब यह जिनत्व की पहली सीढ़ी पर है, ऐसा समझना चाहिए। जिनेंद्र भगवान बनेगा वो 13वें गुणस्थान में। अभी करण लब्धि में प्रवेश करते वो कहेंगे कि वो जिनत्व की पहली सीढ़ी पर है, क्योंकि अभी उसको वो नो रिटर्न है। अभी वो सम्यक दर्शन बिल्कुल प्राप्त करेगा ही, और भले सम्यक्त्व से गिर भी जावे, मिथ्यात्व में भी जावे, तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो नियम से मोक्ष पहुंचने वाला है, पहुंचने वाले ने मोक्ष प्रकट करने वाला है। तो इसलिए उसको भी इवन ये सासाधन वाले को भी कहीं कहीं जिन कहा है। क्यों? भले गिर गया है मगर अभी उसको एक बार मिल गया सम्यक दर्शन, अभी वो ज्यादा टाइम संसार में रुल नहीं सकता। तो यहाँ तो अधप प्रवृत्तकरण उसने शुरुआत कर दी, यहाँ तो दूसरे करण की बात की, अपूर्व करण की बात की है। परंतु अधक करण होगा उसको अपूर्व करण भी होगा और उसको अनिवृत्ति करण भी होगा, तो उसके जिनत्व की पहली सीढ़ी उसने उस पर पैर रख दिया।
देखिए यहाँ जिनत्व जो कहा गया है वो जिनत्व का अर्थ जिन यानी परमेश्वर, जिनेंद्र भगवान, वो जिनेंद्र भगवान का जो जिनेंद्र भगवान पना है जिनत्व, उसकी शुरुआत होती है ख्याल में। यानी अभी जैसा आपको अभी बताया गया कि वह जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो नियम से जिनेंद्र बनेगा ही बनेगा, सिद्ध भी होगा। तो वह जो जिनेंद्र पना जो है उसकी शुरुआत, प्रथम सीढ़ी कहा ना, पहली सीढ़ी है, तो यहां से उसका जिनत्व स्टार्ट होगा।
यो जी धातु है ना, जी यानी जीतना, यानी यहीं से कर्मों को जीतने का प्रारंभ हो जाएगा। इससे पूर्व कितने भी उच्च प्रकार का शुभ भाव होता था तो भी क्या होता था, कुछ काल के लिए पाप कर्म नहीं बांधते थे, फिर पुण्य बंधा था। परंतु ऐसा कहीं नहीं कि जो पुण्य बांधने वाला वो सदाकाल पुण्य ही बांधता रहे। पुण्य बांधा, कुछ काल के परिणाम बाद परिणाम पलट गए, फिर पाप बांधेगा, कभी पुण्य बांधेगा, कभी पाप बांधेगा, कभी स्वर्ग आदि उच्च गति पाएगा तो कभी नरक आदि और निगोद आदि नीच गति पाएगा, फिर भी उसका यह परिभ्रमण हमेशा चलता रहेगा। यानी कोई भी उच्च प्रकार का शुभ भाव इसमें से छूटने के लिए कार्यकारी नहीं है। तो ये जो जी धातु है जीतना, यानी ये जी का अर्थ होता है जीतना, और जिसने जीता है वो जिन है। कर्म शत्रुओं को यानी मोह राग द्वेष को जिसने पूर्ण रूप से जीत लिया है वो जिन है, और जिसने आंशिक रूप से जीत लिया है वो जैन है। हम जैनी कहलाते हैं ना, तो जैन किसने कहना है, तो जिसने मोह राग द्वेष को आंशिक रूप से जीत लिया, यानी ये जैन भी कब से कहेंगे, चौथे गुणस्थान से आगे। और उसी को यहां जिनत्व की पहली सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। यही से जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीते उसे जिन कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार यानी इस परिभाषा के अनुसार जिनत्व का प्रारंभ होता है। इसके आगे जैसे जैसे कर्म शत्रुओं का अभाव होता जाता है वैसे वैसे जिनत्व धर्म का प्रादुर्भाव होता जाता है, यानी और वो बढ़ता जाता है अधिक। वो जैसे चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, ऊपर के गुणस्थानों में चला जाता है तो जिनत्व का जो है वो अधिक अधिक प्रकट होता जाता है। और 12वें गुणस्थान के अंत में जब यह जीव समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर चुकता है तब पूर्ण रूप से जिन संज्ञा को प्राप्त होता है। सिद्ध परमेष्ठी तो समस्त कर्मों से रहित है, इसलिए अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी कर्म शत्रुओं के जीतने से साक्षात जिन है ऐसा समझना चाहिए। वे साक्षात जिन, और इन्होंने जिनत्व का प्रादुर्भाव कर दिया, भी जिनत्व की पहली सीढ़ी प्रकट कर दी। इस प्रकार शास्त्रारंभ में अनंत आदि विशेषणों से युक्त अरहंत और सिद्ध दोनों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। यह मंगलाचरण की पहली गाथा समाप्त होती है। दीनेन्द्र भगवान कैसे है और उसको नमस्कार करता हूँ, ये पहला मंगलाचरण वीर से आचार्य ने लिखे हुए, यानी धौला शास्त्र का यह पहला मंगलाचरण। जिस शास्त्र की उन्होंने टीका लिखी है षटखंडागम, उसका मंगलाचरण तो अभी आगे आएगा। यहाँ सबसे प्रथम सिद्ध और अरहंतों को नमस्कार किया। समय ज्ञान चंद्रिका में भी हम देखते थे ना, सबसे पहले सिद्धों को, अरहंतों को, फिर जिनवाणी को वगैरह वगैरह आचार्यों को, उपाध्यायों को नमस्कार किया था। वैसे अब यहाँ दूसरे नंबर पर, पहले हम श्लोक पढ़ेंगे ऊपर का, इस पेज के स्टार्टिंग में ऊपर है। बारह अंग गिज्झा वियलिय मल मूढ़ दंसनुतिलया विविहवर चरण भूसा पसियउ सुय देवया सुइनम। एक 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 पढ़ेंगे हम। अभी श्रुत देवता को नमस्कार करते हैं ना, पसियउ सुय देवया सुइरम। सुय देवया यानी श्रुत देवता, पसियउ यानी मुझे प्रसन्न हो, सुइरम सुचिरम यानी चिरकाल तक। उसका पूरा अर्थ नीचे पढ़ेंगे हम, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जो श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध बारह अंगों से ग्रहण करने योग्य है, द्वादशांग जिनवाणी कहलाती है, हमें मालूम है श्रुत ज्ञान के बारह अंग है वो। ज्ञान मार्गना में हमने विस्तार किया, देखा था, यहाँ भी आगे चलकर आएगा विस्तार, कौन कौन से बारह अंग है, वो कैसे है, उसका स्वरूप क्या है। तो ये जो प्रसिद्ध बारह अंगों से ग्रहण करने योग्य है, अर्थात बारह अंगों का समूह ही जिसका शरीर है, यानी जो यहाँ श्रुत देवता कहा, ऐसी कोई देवी नहीं है। जैसे हम कैलेंडर पर देखते हैं, कोई लक्ष्मी है, कोई सरस्वती है, तो वो सरस्वती देवी हमको धन देवे, ये बुद्धि देवे, और लक्ष्मी हमको पैसा देवे, तो ऐसी कोई स्त्री नहीं है वहाँ। तो यहाँ जो द्वादशांग रूपी जो रचना है, द्रव्य श्रुत जिसको कहा, उसी को श्रुत देवता कहा है। तो उसका शरीर है नहीं, उसका बारह अंग जो है वही उसका शरीर है। देखो फिर से, श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध बारह अंगों से ग्रहण करने योग्य है, अर्थात बारह अंगों का समूह ही जिसका शरीर है। एक बात, जो सर्व प्रकार के मल यानी अतिचार और तीन मूढ़ता, इनसे रहित जो सम्यक दर्शन रूप उन्नत तिलक से विराजमान है। सम्यक दर्शन कैसा है? मल रहित है यानी अतिचार रहित है, और तीन मूढ़ता रहित है। मालूम है कौन सी तीन मूर्ता? हाँ, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता कहो या पाखंड मूर्ता कहो। गुरु मूर्ता यानी देव, हाँ, लोक की जो भ्रामक कल्पनाएं चलती हैं लोक में वो वाली, और फिर गुरु के संबंध में जो भ्रम चलता है, इन तीन मूर्ताओं से रहित। हमने तो वो तो 25 दोषों से रहित ऐसा भी देखा था, 8 गुणों से युक्त वगैरह वगैरह। ऐसा जो सम्यक दर्शन है, उस रूप उन्नत तिलक, तिलक यानी वो चांदला करते हैं, विराजमान है, और नाना प्रकार के निर्मल चारित्र ही जिसके आभूषण है, ऐसी भगवती श्रुत देवता चिरकाल तक प्रसन्न रहो। यानी इसमें हमें सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, स्थिरता कैसे प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग कैसा मिले, इसका उपदेश इस श्रुत में आता है। इसलिए यहाँ श्रुत को देवता ऐसा उपमा देकर श्रुत देवता को दूसरा नमस्कार किया है, यानी जिनवाणी को यहाँ दूसरा नमस्कार किया। पहले में अरिहंत और सिद्धों को नमस्कार किया, और फिर श्रुत देवता को नमस्कार किया, क्योंकि मोक्ष मार्ग का संपूर्ण उपदेश हमें तीर्थंकरों के द्वारा ही उपलब्ध है, और तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया था उसको सुनकर गणधरों ने ये बारह अंगों की रचना की थी, और उन बारह अंगों में ही आत्मा का स्वरूप कैसा है और उसको कैसा प्राप्त करना, इसका पूरा ही विवेचन उपदेश दिया है। तो ये दूसरा नमस्कार श्रुत देवता को हो गया।
देखो यहाँ पर श्रुत देवता यानी एक स्त्री की उपमा दी है यानी विद्या को, और कहते हैं कि जैसे स्त्री में अलंकार आदि होते उससे वो सुशोभित होती है, वैसे भी तिलक हमेशा स्त्री का एक शोभायमान एक अलंकार समझा गया है। इस तरह से उनको ये बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तिलक है किसमें, उसमें, और उसमें चारित्र के जो विविध अलग अलग भेद है जो उसमें वर्णित है उन अलंकारों से वह सुशोभित है। ऐसा कर ऐसे श्रुत देवता को हमारा नमस्कार हो। इस तरह से प्रथम में तो देव को और बाद में शास्त्र को कहो नमस्कार करके अभी आगे बढ़ते हैं, आगे की बात बताएंगे।
अब गंधर्व देवों को नमस्कार करेंगे, ऊपर तीसरे नंबर की गाथा पढ़कर फिर नीचे उसका अर्थ देखते हैं। सयल गणप उमर विणो विविहिद्धि विराया विनिसंगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी अंतु। इसका अर्थ करते हैं जो सर्व प्रकार के गण, गण यानी मुनिगण, देखो गणधर उसको गणपति भी कहा, गणेश यानी गण का ईश, मुख्य आचार्य थे ना वे, मुनि गणों के जो ईश है, जो सबसे उत्कृष्ट ऐसे आचार्य पद पर स्थित है, वो गणधर को ही वहाँ गणपति भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं, गणनाथ भी कहेंगे, इसे अलग अलग शब्द उसके लिए आते हैं। ये गणेश कहते जो अन्य रूप अपने आंखों के सामने आता है उसको नहीं समझना, ख्याल है ना। जो सर्व प्रकार के गण यानी मुनिगण, अर्थात सर्व प्रकार में किस किस को लिया, तो ऋषि, यति, मुनि और अनगार, सब मुनि ही है परंतु किसी को विशेष रिद्धि प्राप्त हो, कोई विशेष ध्यान स्वाध्याय में है लीन, मुनि अनगार सभी मुनियों को ही बताने वाले हैं। इसको चार संघ भी कहते हैं, चतुर्विध संघ। इन चार प्रकार के संघ रूपी कमलों के लिए या चतुर्विध संघ जब कहते हैं तो दूसरा ही उसका अर्थ हो सकता है, मुनि, आर्य का, श्रावक और श्राविका, सबको मिलकर भी चतुर्विध संघ कहते हैं। यति यानी वो योजते हैं ना अपने आप में, वो मुनि के ही नाम है, उसमें आया था ना ये सब यति मुनि वगैरह,
योग, योग से यानी अपने स्व से जुड़ते हैं यानी अपने स्वरूप में एकाग्र होते हैं, उनको ही योगी कहो या यति कहो कहा जाएगा।
यानी स्वरूप में यतनते यानी यत्न पूर्वक उसमें जुड़ते हैं, ऐसा लेना उसमें। इसमें तत्वार सूत्र में भी इसकी चर्चा की है, मैं कहती हूँ रत्नकरण शाहूकाचार्य में भी यह तो दूसरे प्रकार से कैसे मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन चार प्रकार के संघ रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान है। यानी कमल खिलता तो स्वयं की अपनी शक्ति से, उसमें निमित्त वहां सूर्य का है, तो जैसे कमल के खिलने में सूर्य का निमित्त है, वैसे ये चार संघ रूपी जो जीव है, मुनि है, श्रावक है, सब जो जीव है उनके लिए ये सूर्य के समान है। कौन, गणधरों की बात चल रही है, क्योंकि उनका उपदेश मिला ना अपने। और कैसे वे बल, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकार की रिद्धियों से विराजमान होने पर भी, यानी उनको अनेक रिद्धियां प्राप्त है गणधरों को, फिर भी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहते हैं। देखो यहाँ विरोधाभास बताया है, इतनी रिद्धियां होने पर भी निष्परिग्रह है, ऐसा ख्याल आता है ना। क्या कहते हैं कि अनेक प्रकार की रिद्धियों से विराजमान होने पर भी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहते हैं, यानी वो रिद्धियां तो है परंतु उस रिद्धियों के यूटिलाइज करने के, वो रिद्धियां कुछ काम में लाए अपने लिए, ऐसे उसके वहां राग के परिणाम ही नहीं है उनको, है ना। हमें कोई रिद्धि हो, कोई पैसा है तो चलो कैसा इसको वापरे, हमको विचार आता है ना पहले में पहले, पर उनको इतनी सारी रिद्धियां हैं परंतु भले पड़ी है वहां, क्योंकि उनकी विशुद्धि के कारण वैसी अनेक रिद्धियां उनको प्राप्त होती है, परंतु वो रिद्धियां अपने कुछ काम आए, जैसे अनेक औषधि रुद्धि भी होती है अनेक प्रकार की, या भोजन संबंधी बहुत सारी विद्या है, ज्ञान संबंधी ये बुद्धि रुद्धि वगैरह, हमने वो तो रुद्धि का वो कोई हमने पूजा की थी ना, हाँ 64 रिद्धि वाली, हाँ गणधर वाला ही कहते उसको, गणधर वाले पूजन कहते, यानी उनकी सभी रुद्धियों का वर्णन आता है उसमें, परंतु वो रुद्धि हमको उसको वापर करे ऐसी कभी उनको बुद्धि नहीं होती, इसलिए निस्संग कहा, यानी रिद्धि धारक होते हुए भी निस्संग है। निस्संग है दोनों प्रकार के, ना अंतरंग परिग्रह है और ना बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह याद है? हाँ अश्विन भाई, नहीं आप बोलना। हाँ मिथ्या तो सबसे पहला बड़ा परिग्रह, हाँ फिर हाँ क्रोध मान माया लोग, और नौ नौ कषाय, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान उसमें नहीं करना। एक मिथ्यात्व, चार कषाय ने क्रोध मान माया लोग, उसमें सभी प्रकार के ले लेना, और फिर नौ नौ कषाय, ये अंतरंग हुए। और बहिरंग में वो वस्त्र पात्र सोना चांदी वो सब जो गिने हमने, वो 10 बहिरंग परिग्रह। और कैसे है? जो वीतरागी होने पर भी समस्त भूमंडल के हितैषी है, यानी ये यहाँ भी विरोधाभास बताया है। वीतराग यानी जिसको कोई राग ही नहीं है, तो राग नहीं है तो जीवों पर करुणा करने का कैसा भाव आया, ख्याल है ना? तो वीतराग होने पर भी समस्त भूमंडल के हितैषी है, ऐसे गणधर देव प्रसन्न हुए। अभी इसी का विशेषार्थ बताते हैं।
हितैषी का अर्थ हित करने वाले। देखो वितरागी जो होते हैं उनको अन्य के प्रति कोई भी भाव नहीं होते हैं,
राग नहीं है ना,
फिर भी उन्होंने ये जो 12 अंक की रचना की है वह तो जगत के ऊपर महान उपकार है, उनके हित की बात है, इसलिए उनको हितैषी कहा ना। यहाँ ऐसे गणधर देव प्रसन्न हो वे,
यानी उनकी जो करुणा है वो वितरागी करुणा है। हमें करुणा का भाव आता है तो क्या होता है, हम दुखी होते कि सुखी होते? करुणा से दुखी होते हैं, सामने वाले जीव को हेल्प करे ऐसा भाव होता है, और जब तक वो अगर नहीं कर सके मानो तो कितने अंदर से अंदर जलते रहते। ये दुखरूप परिणाम है हमारा करुणा का भाव, हमारा करुणा का भाव की बात चल रही है। और ये जो वितरागी ऐसे है कि उनका उनकी जो करुणा है वो वितरागी करुणा है, वे तो जितनी वितरागता है उतने सुखी है। अभी ये मुनि है, गणधर की बात चल रही है, तो तीन कषायों का अभाव है और संज्वलन कषाय है, तो वे ऐसे हमारे जैसे दुखी नहीं है, वितरागी है, फिर भी सहज ऐसी करुणा के परिणाम सहज ऐसा उपदेश होता है कि उसमें से जीवों की करुणा पल जाती है। इसका विशेषार्थ देखेंगे। यहाँ देखो इस मंगल रूप गाथा में ये तीसरा मंगल चल रहा है ना, गणधर देव को नमस्कार कर रहे हैं। इस मंगल रूप गाथा में विविधि विराइया विनिसंगा, यानी विविध प्रकार की लब्धि वाले है विराजमान है फिर भी निस्संग है, ये एक विरोधाभास बताया। तथा नीराया विकुराया, नीराया नीराया यानी नीराग, नीराग यानी जिसका राग निकल गया उसको नीराग कहो या वितराग कहो की बात है। फिर भी कुराया, फिर भी राग सहित है, वितराग होते हुए भी कैसा राग, हितैषी है ना, ये मैं दूसरे का कर सकता हूँ इसलिए बुद्धि तो है ही नहीं, करने का भी करने धरने का भी राग नहीं है, फिर भी सहज रूप से ऐसे जीवों का हित होता है, इसलिए क्या कहा, नीराया भी कुराया। इन दो पदों में विरोधाभास अलंकार है, यानी लगता तो विरोध है, इसको ये साहित्य का इसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार, यानी उनकी कर रहे स्तुति, और स्तुति में ही ऐसा कहते आप ऐसे होते हुए भी ऐसे हैं, ये इस प्रकार का विरोधाभास उसमें बहुत हमने पढ़ा था लघु तत्व स्फोट में, अमृतचंद्राचार्य ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति रूप रचना की है, बहुत अच्छा है उसमें, पूजा में भी आते हैं। हाँ वो हुकुमचंद जी वारियल ने लिखी हुई है ना महावीर भगवान की पूजन, मति ज्ञान रहित सन्मति जी ने, उनका नाम सन्मति है, सतमति अच्छी मति, और फिर भी कैसे वो मति ज्ञान रहित है। क्यों मति ज्ञान रहित है? केवल ज्ञानी है, सूक्ष्म ज्ञान से रहित है ना। मति ज्ञान रहित सन मति जिनेश, और भी है ना, दो तीन है उसमें बताए। देखो इसको विरोधाभास कहते हैं। जो सेकंड लाइन, जो नाना प्रकार की रिद्धियों से विराजमान है वे संग अर्थात परिग्रह रहित कैसा हो सकते हैं, यानी उसको निस्संग कैसे हो सकते हैं? उसी प्रकार जो नीराग अर्थात वीतराग है उनके कुत्सित अर्थात खोटा राग कैसे हो सकता है? खोटा राग यानी दुनिया को तकलीफ वाला वो नहीं, दूसरे का भला करूं ये शुभ भाव भी उनके लिए कुराग है, यानी खोटा राग है। मुनियों की बात चल रही ना, इस विरोध का परिहार इस प्रकार कर लेना चाहिए कि गणधर देव विविधि विरायावी अर्थात बल बुद्धि यानी बल रिद्धि बुद्धि रिद्धि वगैरह जो अनेक प्रकार की रिद्धियां है, बल बुद्धि आदि नाना प्रकार की रिद्धियों से युक्त होने पर भी निस्संग अर्थात सब प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से तथा रिद्धियों के उपयोग से रहित होते हैं। रिद्धियों का उपयोग करो ऐसी उनकी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार वे नीरायावी अर्थात वीतराग होने पर भी कुराया अर्थात भूमंडल में रहने वाले समस्त प्राणियों के हितैषी होते हैं, अथवा वीतराग होने पर भी अभी भूमंडल पर विराजमान है मोक्ष को नहीं गए हैं, वो जाने वाले हैं। अब चौथा, अब धरसेन आचार्य को नमस्कार कहेंगे। कल हमने देखा था धरसेन आचार्य ने ये उपदेश भूतबलि और पुष्पदंत को दिया, और भूतबलि पुष्पदंत ने षटखंडागम की रचना की, और उस षटखंडागम के ऊपर ये धवला शास्त्र की टीका रची गई जो वीरसेन आचार्य ने लिखी है। तो यहाँ धरसेन को नमस्कार करेंगे, फिर पुष्पदंत को, भूतबलि को, और हाँ ये वीरसेन आचार्य उनको नमस्कार कर रहे हैं, और हम वीरसेन को करेंगे, है ना। ये चौथा ऊपर पढ़ते हैं। पसियौ महुधर सेनो परवाय गयो दानवर सिंहो सिद्धन्तामिय सायर तरंग संघाय दो यमनो। नीचे दूसरा पैराग्राफ में उसका अर्थ किया है। हाँ, चार नंबर जिसमें लिखा है ना वो पैराग्राफ। जो परवादी रूप हाथियों के मद की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ सिंह के समान है, ऐसा है यदि हाथी और सिंह लड़े तो मदोन्मत्त हाथी जिसको कहते हैं, वो मद जब मदोन्मत्त होता है ना क्या, वो हाथी किसी से कंट्रोल नहीं हो सकता उसका, तो ऐसे हाथी को भी सिंह जीत लेता है। तो यहाँ सिंह और हाथी की उपमा देकर हमें समझाया है। हाथी किसको कहा है यहाँ? परवादी रूप हाथियों की मद की आकांक्षा, ये परवादी या परमतवादी या एकांतवादी अन्य मति जिसको कहा है, अपने ही मतों का जो खोटे मत है उसका आग्रह करने वाले, जो आग्रह यानी उसको पक्षपात है ना, हम ही सच्चे हैं, वैसा ही वो वस्तु को गलत ही मान लेते हैं। तो ऐसे जो परवादी है उनको तो अहंकार हुआ है अपने मत का, और उसी को वो सच मान लेते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान कहो या अभी दर्शन आचार्य क्या करेंगे वहाँ, कि सिद्धांत जो है अपने जैनियों के, जो जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए सिद्धांत है, उसके आगे कोई भी परमत खड़ा नहीं हो सकता है, वो टिक ही नहीं सकता, उसका निराकरण हो जाता है, खंडन हो जाता है। सत्य बात के आगे खोटा जो है वो तो टिकने वाला है ही नहीं है। तो ये परमत जो है उसके लिए मदोन्मत्त हाथी की उपमा दी है। तो परवादी रूप हाथियों के मद की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ सिंह के समान है, अभी ऐसे कौन है वो बाद में बताएंगे। अर्थात जिस प्रकार सिंह के सामने मदोन्मत्त भी हाथी नहीं ठहर सकता, साधारण हाथी की बात नहीं की, मदोन्मत्त हाथी कि जिसको अन्य कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा मदोन्मत्त हाथी, किंतु वह गलित मद होकर भाग खड़ा होता है, सिंह को देखकर वो गलित मद होता है ना, उसका मद उतर जाता है और वो भी भय से भाग जाता है। उसी प्रकार जिनके सामने अन्य मतावलंबी अपने आप गलित मद हो जाते, उनका अहंकार निकल जाता है, भयभीत होते हैं, अपने सिद्धांत सुनकर उनका मत यानी उनका खंडन हो जाता है और सिद्धांत रूपी अमृत सागर की तरंगों के समूह से जिनका मन धुल गया है, अर्थात सिद्धांत के अवगाहन से जिन्होंने विवेक को प्राप्त कर लिया है, ऐसे कौन है दर्शन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हो। यानी सिद्धांत रूपी जो अमृत सागर है उसमें वो उससे उनकी बुद्धि यानी विवेक कहा, यहाँ विवेक प्राप्त कर लिया है उन्होंने, सम्यक ज्ञान तो है ही है, उसमें भी अधिक ये श्रुत ज्ञान जो है उसमें बहुत सारा उन्होंने पा लिया है, ऐसे धर्सेन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हो। उसके पश्चात पांचवा श्लोक देखते हैं हम। ये मंगलाचरण ही चल रहा है अभी, पहले अरहंत सिद्धों को नमस्कार किया, फिर श्रुत देवता को, उसके पश्चात गणधर देव को, उसके पश्चात अभी धर्सेन आचार्य को। गणधर से धर्सेन आचार्य तक आचार्यों की परंपरा हुई है। गणधर ने उपदेश और अन्य आचार्यों को मुनियों को दिया, उन मुनियों ने अपने अगले वाले आचार्यों को मुनियों को दिया, इस तरह से वो धर्सेन आचार्य तक कमती कमती होते होते होता कुछ ज्ञान रह गया। तब धर्सेन आचार्य को ऐसा भाव आया कि अगर लिखित रूप से नहीं रहे तो अभी इसका तो जो है उतना भी विच्छेद होने जाने वाला है, तो उन्होंने भूत बलि और पुष्पदंत को बुलाकर उनको ये बात सब समझाई सिखाई और फिर उसके पश्चात उसकी लिखित रूप से रचना हुई। तब तक लिखित रूप से रचना नहीं हुई थी, इसलिए अभी आगे पुष्पदंत आचार्य को ये वीरसेन स्वामी नमस्कार करते हैं। पांचवा जो श्लोक है गाथा ऊपर पढ़ेंगे पहले। प्रणमामि पुष्पदंतम दुकयंतम दुन्नयंधयार रविम भग्ग शिवमग्ग कंटय मिसि समीवयिम सयादंतम। जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं, दुकयंतम और जो कुनय रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान है, कुनय ये फिर दुर्नय कहो या कुनय कहो की बात है, नय किसको कहते हैं, तो जो सम्यक है, जो प्रमाण यानी जो सच्चा ज्ञान है, उस सच्चे ज्ञान को कोई एक अंश जो है उसको नय कहेंगे। अभी नय किसको कहना क्या उसकी बात आगे आएगी, अभी तो हमें कुछ मालूम नहीं है, ख्याल है ना, ये नयों की बात भी इसमें समझाएंगे। तो जो सच्चा नहीं है ऐसा जो एकांतवाद है वो क्या, जैसे जैनी क्या कहेंगे, द्रव्य नित्य भी है अनित्य भी है, फिर अपेक्षा कहने में आएगी, किस अपेक्षा नित्य है और किस अपेक्षा अनित्य है, तो नित्य भी है अनित्य भी है वो तो प्रमाण ज्ञान होगा, विशिष्ट अपेक्षा से नित्य है विशिष्ट अपेक्षा से अनित्य है ये दोनों ही नए हो जाएंगे, बराबर। परंतु अन्य मत ऐसे है कि नहीं, द्रव्य को सर्वथा नित्य ही मानते हैं, कोई कोई तो ऐसे है कि द्रव्य को सर्वथा अनित्य ही, वो अनित्य ही है ऐसा लगा देते हैं, तो उसको कहते कुनय या दुर्नय। तो ये जो दुर्नय या कुनय रूपी जो अंधकार है, देखो कुनय रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान है, कैसे नाश करेंगे, तो सम्यक जो उपदेश देंगे, जिनवानी का ही उपदेश दिया ना इन लोगों आचार्यों ने, तो उसके द्वारा कुनय रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि कोई परमतवादी यानी कोई अन्य दूसरे धर्मी को ढूंढना पड़ेगा, ये हम ही है कि हमारे ही मन में कुछ न कुछ अभिप्राय गलत रहता है, नहीं नहीं वो सामने ये चीज नहीं होगी तो ज्ञान कैसे होगा, गेय से ही ज्ञान होता है, ऐसे मानने वाले कहीं कोई दूसरे बुद्ध नहीं ढूंढने पड़ते हमें, हम जैनी है ऐसे कि जो हमारी मान्यता, जब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं है तब हमारी मान्यता ऐसी थी ये परमत है और उसका वो नाश होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसी अनेक बातें होती है। जिन्होंने सेकंड लाइन मोक्ष मार्ग के कंटकों को यानी मिथ्या उपदेश आदि प्रतिबिंधक कारणों को भग्न अर्थात नष्ट कर दिया है। मोक्ष मार्ग के कंटक कौन हो गए कि जो मिथ्या उपदेश देने वाले आदि अन्य जो जो कुछ बातें हैं, तो उसको कंटक कहा, तो उनको वो नष्ट कर देते हैं। जो ऋषियों की समिति अर्थात सभा के अधिपति है, यानी ऋषियों में जो प्रमुख है और जो निरंतर पंचेंद्रियों का दमन करने वाले है, यानी पंचेंद्रिय विजयी है, ऐसे पुष्पदंत आचार्य को मैं यानी वीरसेन प्रणाम करता हूँ। ये भी पांचवी लाइन, ये पांचवा श्लोक हो गया अपना। अब उसके आगे जो है उसमें भूतबली नामक जो आचार्य है, एक पुष्पदंत और एक भूतबली, उनको यहाँ नमस्कार करते हैं। पहले ऊपर पढ़ेंगे गाथा। प्रणमः कय भूय बलिम भूय बलिम केशवास परिभूय बलिम विनिहय वम महपसरम वड्ढाव्य विमलनाणवम महपसरम। इसमें भी यो कहते ना श्लेष या यमक, इस तरह से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। देखो, जो भूत अर्थात प्राणी मात्र से पूजे गए हैं, भूत बलि इस शब्द को उन्होंने उसका यानी समझाया, उसका अर्थ भूत यानी प्राणी मात्र, प्राणी को भूत भी कहते हैं। ये भूत यानी व्यंतर, उसकी बात बाद में करेंगे, और बलि यानी उसके द्वारा पूजित पूजा की गई है। ऐसे तो प्राणी मात्र से जो पूजे गए हैं अथवा भूत नामक व्यंतर जाति के देवों से पूजे गए, जब ये षटखंडागम की रचना हुई थी तब व्यंतर जातियों के जीवों ने आकर उनकी पूजा की थी, इसलिए भूतों से वो पूजा पूजित है ऐसा भी लिखा है। जिन्होंने अभी आगे आए ना केशवास परिभूय वलिम, वो भूय वली के ऊपर फिर उन्होंने एक श्लेष और लिख दिया, क्या जिन्होंने अपने केश पास अर्थात संयत सुंदर बालों से वली अर्थात जरा आदि से उत्पन्न होने वाली शिथिलता को परिभूत अर्थात तिरस्कृत कर दिया है। वली यानी हम कहते हैं वो क्या झुर्रिया पड़ती ना, उसको वली कहते हैं। करश्री, करश्री ये वली, तो भू ये बली यानी उन्होंने क्या किया, उसको परिभूत किया है यानी तिरस्कृत कर दिया है। परिभू या वलिम है ना, ये नहीं, वो तो श्लेष अलंकार ये बता रहे बस कि यानी युवा अवस्था में थे ना, तो उन्होंने जरा को नष्ट कर दिया, इसे लिखा। जिन्होंने कामदेव के प्रसार को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने निर्मल ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा लिया है, ऊपर ही क्या विनीय वम पसरम यानी कामदेव के प्रसार को नष्ट कर दिया और ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा दिया। विनीय वम पसरम और वहां बम पसरम, वम और बम देखो ऊपर की लाइन में, हाँ ये उनकी क्या है, ये तो बुद्धि की चमक दिखती है ना उसमें, ऐसे एक जैसे शब्द लेकर उसमें उन्होंने गाथा में घूम दिया इस तरह से कि उनका वर्णन आचार्य का हो गया। वम मैंने वो कामदेव विनीह वम पसरम, वम पसर यानी कामदेव का प्रसार को नष्ट कर दिया, विनीह यानी विनष्ट कर दिया, और वड्ढावीय यानी वृद्धिंगत किया, हाँ किसको बढ़ा दिया, किससे विमल ज्ञान से, किसको ब्रह्म पसरम ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा दिया और कामदेव के प्रसार को नष्ट कर दिया।
यहाँ एक्चुअली ब्रह्मचर्य को प्रसार दिया यानी ब्रह्म यानी आत्मा और आत्मा में अधिक लीनता करना, वही ब्रह्मचर्य का प्रसार है, वो अन्य कोई ब्रह्मचर्य की जो लौकिक बातें उसकी यहाँ बात नहीं ले रहे हैं। अंतरंग में अधिक स्थिर जो है उसके कारण तो बाकी कोई परिणाम आएंगे ही नहीं, ये दोनों बातें आ सकती है उसमें।
अभी उसी का विशेषार्थ अगले पेज पर लिखा है। विशेषार्थ। जिस समय भूतबलि आचार्य ने अपने गुरु धरसेन आचार्य से सिद्धांत ग्रंथ पढ़कर समाप्त किया था, उस समय भूत नामक व्यंतर देवों ने उनकी पूजा की थी। वो कल हमने देखा था, बताया था वो अंकलेश्वर में उनका ग्रंथ पूरा हुआ, तब भूत नाम के व्यंतरों ने भी आकर उनकी पूजा की थी वहाँ। इसका उल्लेख धवला में आगे स्वयं किया गया है, ये बात भी आगे इसमें आ जाएगी। अब इससे इसके आगे अभी मंगलाचरण वगैरह ग्रंथ की शुरुआत करेंगे अभी यहाँ से। तो ग्रंथ की आदि में किस तरह से ग्रंथ लिखा जाता है, शुरुआत में क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ कोई बातें बताएंगे। तो ऊपर जो पहली जो गाथा है, पहली पांच गाथा है, छह गाथा है, तो मंगलाचरण की थी। अब यहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में क्या बताना चाहते वो देखेंगे। मंगल निमित्त हेउ परिमाणम नामतः यकत्तारम वागर्य छप्पि पच्छा वखाणौ सत्तमाइरियो। इसका अर्थ नीचे लिखा है चौथी पांचवी लाइन में। मंगल, अभी छह बातें बताए कि ग्रंथ के प्रारंभ में इन छह बातों लिखकर फिर ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। तो कौन कौन सी ये छह बातें हैं? तो पहली है मंगल, दूसरा है निमित्त, यानी मंगल जो अभी हमने मंगलाचरण देखा है, अरिहंतों को, सिद्धों को नमस्कार किया, श्रुत देवतों को, गणधरों को, दर्शन आचार्य को, भूतबली और पुष्पदंत को नमस्कार किया, ये मंगलाचरण। फिर निमित्त, यानी किसके निमित्त से ये ग्रंथ की रचना हुई है, तो मैं पहले में पहले भगवान महावीर को बताएंगे। इस ग्रंथ के मूल कर्ता तो कर्ता की बात तो बाद में करेंगे, परंतु निमित्त किसके निमित्त से हुए हैं। एक मिनट देखो, 56 पेज निकालना। ग्रंथ रचना का निमित्त, यानी भव्यजन उसका स्वरूप समझे इसलिए ग्रंथ की रचना हुई है। ऊपर से छठी लाइन, पेज नंबर 56, ऊपर से छठी लाइन बद्ध लिखा है, वहां से पढ़ेंगे हम। ये यहाँ ग्रंथ रचना का निमित्त बता रहे हैं, ये हम यानी कंटिन्यूएशन में बाद में पढ़ेंगे ही। अब दो दो तीन तीन लाइन जो हमने छह पॉइंट अभी देखे ना, मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, परिमाण, नाम और कर्ता, ये छह बातें पहले बताएंगे। तो निमित्त किसे कहना, किसके निमित्त से ग्रंथ की रचना हुई है?
देखिए, पहले तो ऐसी पद्धति थी कि जब कोई आचार्य ग्रंथ लिखते थे तो ये पहले पांच या छह जो पॉइंट्स है वो तो उसमें आने ही चाहिए। उसमें क्या है कि भाई ये ग्रंथ जो है उसका तो मंगलाचरण किया ही जाएगा, तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है वो भी बात आएगी। फिर किस निमित्त से वो ग्रंथ की रचना हो रही है वो भी उनमें बताएंगे, उसके साथ साथ उनका हेतु भी क्या है वो भी बताएंगे। इस तरह से जैसे हम आजकल पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के पहले टाइटल आते हैं, कौन कौन काम कर रहा है, कौन डायरेक्टर है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, ये सारी क्यों? लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये तो एक पद्धति हो गई है। ऐसे जब कोई किसी शास्त्र की रचना करते हैं तो ये छह बातें तो उसमें होनी ही चाहिए, नहीं तो वो ग्रंथ पूरा नहीं माना जाएगा, प्रमाण नहीं माना जाएगा, इस तरह की बात है। तो ये जो छह पॉइंट जो आपको दिखा रहे हैं वो छह पॉइंट का विवेचन आगे बहुत विस्तार से आने वाला है। तो अभी से तो आप जरा ग्लानी छोड़कर आगे की बात बताने की गरज नहीं। बोलिए, 56 पेज है।
ये निमित्त क्या है ग्रंथ रचना का? जैसे हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी देखा था, वो चामुंडराय के लिए वो बनाया था, वो बड़े ग्रंथों का, वो उसमें से ये जो गोमटसार रचना हुई थी नेमीचंद्र आचार्य ने लिखी थी चामुंडराय के लिए, वो समझे इसलिए उन्होंने शॉर्ट में बताया था। तो यहाँ क्या कहते हैं कि बद्ध बद्धे ने बंधा हुआ उसको बद्ध कहते हैं। बद्ध और उसके अगेंस्ट मुक्त है ना शब्द, तो बद्धे ने बंधा हुआ। फिर दूसरी बात है बंध, ये कर्म का बंध जो है बंधन। फिर बंध के कारण मुक्त, मोक्ष और मोक्ष के कारण, इन छह तत्वों को निक्षेप नए प्रमाण और अनुयोग द्वारों से भली भांति समझकर, अभी वो निक्षेप नए का अर्थ भी नहीं समझेंगे हम, ये जो बातें हैं, जीव बंधा हुआ है, कर्म बंधन है, क्यों बंधा है, कोई जीव मुक्त है तो उसका मोक्ष यानी छूटना भी हो सकता है, तो उसका क्या उपाय है, ये सब बातें जो है भली भांति जानने के लिए, सभी ओर से भली भांति जानने के लिए, वो नए निक्षेप की बात अभी छोड़ दो, तो ये जानने के लिए, ये या जानकर समझकर भव्यजन उसके ज्ञाता बने, इसलिए यह सूत्र ग्रंथ अर्थ प्ररूपणा की अपेक्षा तीर्थंकर से और ग्रंथ रचना की अपेक्षा गणधर देव से अवतीर्ण हुआ है। ये सूत्र रूप जो गणधर है, ये तो मूल बात तीर्थंकरों ने बताई है और शाब्दी उनकी जो शब्द रचना हुई है वो गणधरों ने की है, और किसके लिए, भव्यजनों के लिए, कि भव्यजन इसको जाने और अपना कल्याण करे, ये निमित्त हुआ ग्रंथ का। अब आगे देखते हैं, यहाँ पेज नंबर हम 8 पर हैं, यानी ग्रंथ के शुरू में मंगल, फिर उसका निमित्त, फिर उसका हेतु बताना है, क्यों किया ये, पहले तो किसके लिए किया फिर क्यों किया, तो नहीं वो तो बाद में पढ़ेंगे हम, कि अज्ञान का नाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति और कर्मों की निर्जरा, ये सब उसमें बहुत सारी बातें बताई है, यानी अभ्युदय सुख और ये मोक्ष सुख, क्योंकि साक्षात उनका जो हेतु है वो मोक्ष सुख की प्राप्ति है, जो मोक्ष मार्गी जीव है, आचार्य है, उनको सहज ऐसे भाव आता है, वो तो अपने लिए लिखते हैं, उनके अपने ये नियमसार में लिखा है ना, मैं अपने लिए शास्त्र की रचना करता हूँ। शास्त्र की रचना करते करते ही स्वरूप की अत्यंत अधिक महती आती है, और वो लिखते लिखते ही स्वरूपानुभव भी कर लेते हैं, लिखते लिखते नहीं, लिखना छोड़कर बीच बीच में, ख्याल है ना, वो उसका हेतु हो गया। फिर परिमाण, परिमाण यानी उसका प्रमाण, परिमाण का अर्थ होता है प्रमाण, प्रमाण कितना बड़ा है, शास्त्र लिखने के पहले वो बता देंगे कि ये कितना बड़ा शास्त्र है, तो यहाँ उन्होंने लिखा है 61 पेज पर, कि पदक की अपेक्षा 18,000 प्रमाण है, और उसका प्रमाण बताना क्यों आवश्यक है, तो शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न करने के लिए, जैसे हम कहेंगे यहाँ 16 भाग है धवला के, तो चला अंदर से ऐसा उत्साह होता है पढ़ने और पढ़ाने वालों को, हम इतना सब बड़ा अच्छा शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, ख्याल आता है ना हमें कितना पढ़ना है और कितना पढ़ाना है, और मति संबंधी व्याकुलता दूर करने के लिए, ये सब बातें आने वाली है आगे, हम क्रम से आने वाली है, मति संबंधी व्याकुलता यानी हमें उत्सुकता होती है ना कि ये धवला पढ़ना है, तो कितना बड़ा है, क्या 2-4 महीने में पूरा होगा, तो नहीं, इसके 16 भाग है, तो कुछ साल तो अवश्य लगेंगे, है ना, हमें मति संबंधी व्याकुलता ने, क्या हमको ये समझ में आएगा, क्यों, तो अवश्य समझ में आएगा, अरे केवल ज्ञान के धनी हैं हम, केवल ज्ञान तो कहाँ से प्राप्त होने वाला है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला, शास्त्र पढ़कर नहीं होने वाला है, ज्ञान की हर एक पर्याय अपने से उत्पन्न होने वाली है, और संगी पंचेंद्रिय है, और ये श्रुत ज्ञानियों ने लिखा है, तो हमारी क्यों नहीं समझ में आएगा, जरूर आएगा, ऐसा लगता है ना, अरे धवला नाम तो हमने बचपन से सुना हुआ होता है, कभी किसी ने सुना है, कभी किसी ने अभी अभी सुना है, तो ऐसे अंदर से बहुत ऐसा प्रणाम तो होते, अरे इतना महान ग्रंथ, परंतु क्या मेरे समझ में आएगा, तो जरूर आएगा, जिसको अंदर से रुचि है कि मैं कुछ समझू, तो उसको बिल्कुल समझ में आएगा ही, कभी ऐसा नहीं लगना कि ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बात है, अपनी समझ में नहीं आएगी। ये हुआ परिमाण। फिर नाम, ग्रंथ का नाम बताया जाएगा, अभी यहाँ तो इस टीका का नाम है धवला, और फिर उसके कर्ता कौन है, वहाँ भी मूल कर्ता महावीर भगवान को पहले ले लेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद उसके उत्तर कर्ता वो गणधर देव को याद करेंगे, फिर आचार्यों की परंपरा बताएंगे, अब सब अंत में बताएंगे वो धरसेन आचार्य ने वो षटखंडागम सिखाया बुध बलि और पुष्पदंत को, और उन्होंने षटखंडागम की रचना की, और उसके पश्चात वो वीरसेन आचार्य ने उसके ऊपर ये टीका लिखी, तो ये कर्ता में वो सब बताया जाएगा। तो इस तरह से मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन छह अधिकारों का व्याख्यान करने के पश्चात आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करे, ऐसा नियम है। करे लिखा है, करूंगा ऐसा नहीं लिखा है, करे यानी दिस इज अ रूल। ग्रंथ के प्रारंभ में ये छह बातें लिखी जाती है, फिर आचार्य ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर देते हैं। विशेषार्थ, इसी को फिर समझाया है, शास्त्र के प्रारंभ में पहले मंगलाचरण करना चाहिए। पहली बात बताई ना, पीछे जिस निमित्त से शास्त्र रचना हुई हो उस निमित्त का वर्णन करना चाहिए। इसके बाद शास्त्र प्रणयन के, प्रणयन यानी रचना, शास्त्र की रचना हुई ना, तो शास्त्र की रचना हुई तो उसका हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है उसका, तो शास्त्र रचना का प्रत्यक्ष और परंपरा हेतु का वर्णन करना चाहिए। उसके पश्चात यानी अनंतर शास्त्र का प्रमाण बताना चाहिए, प्रमाण यानी कितना बड़ा होगा, कितने उसमें श्लोक होंगे या कितने पद होंगे, ये शास्त्र का प्रमाण कहा जाता है। फिर ग्रंथ का नाम और आमनाय क्रम से, आमनाय परंपरा कैसी चली आ रही है, तो मूल हमने महावीर स्वामी को बताएंगे, यहाँ अपने शासन जो है, शासन किसको कहते हैं, जो अंतिम तीर्थंकर है ना उनके आगे उसका शासन चलता रहता है, जब तक आगे के तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक वो पहले वालों का शासन कहलाएगा। पार्श्वनाथ भगवान के पश्चात पार्श्वनाथ भगवान का शासन चलता था, जब महावीर भगवान तीर्थंकर हुए तब से लेकर अभी तक, अभी हमारा वर्तमान में महावीर भगवान का शासन चल रहा है, शासन काल कहते उसको। तो ये आमनाय क्रम से उसके मूल कर्ता, उत्तर कर्ता और परंपरा कर्ता, मूल कर्ता सर्वज्ञ महावीर, फिर उत्तर कर्ता यानी गणधर देव, और परंपरा कर्ता यानी अनेक आचार्य जो बीच में हो गए, उन पूरी श्रृंखला बताएंगे, उनका उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद ग्रंथ का व्याख्यान करना उचित है, क्योंकि ये ग्रंथ या ये कोई रचना है वो कि अपनी नहीं है, कोई क्षोभम ज्ञानी अपने मन मति कल्पना से कोई रचना करे तो वो योग्य नहीं है, ख्याल है ना, क्योंकि जो इसमें जो सिद्धांत बताए जाएंगे वो मूल भगवान महावीर ने जो बताए थे और जो आचार्यों की परंपरा से चले आए हैं वे ही सत्य कहलाएंगे। अभी इस काल में वो पहले वाला नहीं चलता, अब अभी हम नया कोई अपने मत कल्पना से धर्म की बातें लिखेंगे कहेंगे तो वो नहीं चलेगा, तो वो मूल आमनाय से विरुद्ध है, इसलिए वो आमनाय लिखा हुआ। उत्तर करता है ने पश्चात वाले करता, मूल करता है ने महावीर, इसमें गणधर। शास्त्र पहले पढ़ने के पहले ऐसा पढ़ा जाता था, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, और उनके उपदेश के अनुसार जो आचार्य परंपरा चल रही है उसके अनुसार ये जो ग्रंथ लिखा है किसने लिखा है, फिर उनका नाम लेंगे। और इस ग्रंथ का अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, आप श्रोताजन हाँ सावधानता सुनवंतु यानी सावधानतया सुनिए, ऐसे पहले ग्रंथ जो हम मंगलाचरण करते ना तब ऐसे बताया जाता है, कहा जाता है, ऐसे पद्धति है अभी भी है। इसके बाद ग्रंथ का व्याख्यान करना उचित है, ग्रंथ रचना का यह क्रम आचार्य परंपरा से चला आ रहा है और इस ग्रंथ में भी इसी क्रम से व्याख्यान किया गया है। यह ग्रंथ लिखने की पद्धति थी और उसी पद्धति से ग्रंथ लिखा जाता था। आचार्य परंपरा से आए हुए इस न्याय को मन में धारण करके और पूर्वाचार्यों के आचार अर्थात व्यवहार परंपरा का अनुसरण करना रत्नत्रय का कारण है, ऐसा समझकर, क्या कहते हैं, ये क्रिया में क्या रखा है, वो तो पर है, ऐसा नहीं कहा, कि जो मूल आचार जो आचारांग शास्त्र में बताए थे मुनियों के जो आचार है ना उनके हमने पहले बात भी की थी उनके भी क्या क्या कर्म से आवश्यक होते हैं, नमस्कार भी कैसा करते हैं, वो आहार का भी कैसे खड़े रहेंगे, किस तरह से वो हाथ में आहार करेंगे, एक एक छोटी छोटी क्रियाओं का वर्णन ये शास्त्रों में बताया हुआ है। ये तो सारी है तो व्यवहार की बातें, शरीर के कोई क्रियाएं वो तो जीव का तो है नहीं, कैसा बोलना कैसा चलना ये जो उनके जो कुछ क्रियाएं है उसको क्या कहा, व्यवहार परंपरा का अनुसरण। यानी वहां ऐसा नहीं कि मैं शरीर को चलाता हूं वगैरह, वो बुद्धि की बात ही नहीं यहाँ, वो तो सम्यक तो प्राप्त होते वो तो बुद्धि उनकी चली गई है, फिर भी जो जिनेंद्र भगवान ने जैसा वो परंपरा का जो उपदेश दिया है आचारों का, आचार यानी किस तरह यानी आचरण, आचरण का जो उपदेश दिया है, ये आत्मा के आचरण की बात नहीं है, व्यवहार आचरण की बात है। तो आचार यानी व्यवहार परंपरा का अनुसरण करना रत्नत्रय का कारण है। तो ये तो व्यवहार है इससे क्या, व्यवहार तो झूठा होता है, चलो इसको छोड़ दे ऐसा नहीं चलेगा। यानी यो चरणान योग के भी जो नियम है उसके भी पालन करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो चरणान योग की जो आज्ञा है उसका बराबर अनुसरण करना यानी पालन करना रत्नत्रय का कारण है कहा, क्योंकि रत्नत्रय वो उन आचारों से रत्नत्रय नहीं होते हैं, जो उनकी अंतरंग स्थिरता है जो अंतरंग वितरागता है वही रत्नत्रय है। फिर भी जिसको ऐसा ही रत्नत्रय है उनके बाह्य में भी ऐसा ही व्यवहार क्रियाओं का पालन सहज रूप से होता है, कोई हट से नहीं होता वहां, और हट से कोई उसके विरुद्ध भी आचरण नहीं करता है। ऐसा समझकर पुष्पदंत आचार्य सकारण मंगलादि छहों अधिकारों का व्याख्यान करने के लिए मंगल सूत्र कहते हैं। अब यहां से शुरुआत हुई। अच्छा, ये पुष्पदंत आचार्य ने इसकी रचना की है, नमो हरंतानंद वाले, यानी वो धवला का ही, यहां से पहले तो उन्होंने नमस्कार किया सबको और ये मंगल सूत्र यहां बताया। ये मंगल सूत्र या ये मंगल सूत्र नहीं जो चोर उचक के ले जावे, क्यों रोज पेपर में पढ़ते ना, ये सूत्र यानी वो रचना जो है ये नहीं, धवला का ये प्रथम मंगलाचरण है, धवला का ही मंगलाचरण है ये। पहले तो सिद्धों को वगैरह नमस्कार किया, अब ग्रंथों का जो मंगलाचरण है वो यहाँ से शुरू हुआ, ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे फिर हम ऊपर उसको। फिर नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। देखिए ये तो मूल प्राकृत में रचा गया था और ये नमो है, नमो नहीं, न न लिखता है वो तो संस्कृत वाला हुआ, नमः वाला वो संस्कृत हो जाएगा और जब नमः करेंगे तो वो आगे अनंतानम ऐसा नहीं रहेगा, क्या है ना, वो तो बाद में उसमें कुछ अपभ्रंश हो गया उसका। तो यही ठीक है नमो अरिहंताणम, ये न जो बड़े बड़ी न क्या कहते हैं आप हिंदी में इसको, वो बाण वाला न, हम उसको हाँ हम मराठी में बाण वाला न कहते। विशेषार्थ उसका अर्थ पहले कहेंगे मंगलाचरण का। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। तो सर्व साधु ने सभी अन्य मतियों के साधु नहीं लेना है, इस विश्व में जितने भी साधु है, साधु यानी ये यहाँ जो नग्न दिगंबर भाव लिंगी साधु को यहाँ साधु कहा है, ऐसे सभी साधुओं को, कौन से लोक के सभी, कब के, भूत वर्तमान भविष्य के सभी, त्रिकाल वर्ती, इसका विशेषार्थ करेंगे। देखो यह मंगल सूत्र नमोकार मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है तो यह मंगलाचरण का सूत्र, मंगल सूत्र कहा है इसको और इसको हम नमोकार मंत्र कहते हैं। इसके अंतिम भाग में जो लोए अर्थात लोक में और सव अर्थात सर्वपद आए हैं उनका संबंध नमो अरंताणम आदि प्रत्येक नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चाहिए। यानी नमो लोए उन्होंने एक ही बार लिखा, तो कैसा समझना, नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव उज्जायाणम और नमो लोए सव साहूणम। ये लोक के सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, इस तरह से। इसका खुलासा आचार्य ने स्वयं आगे चलकर किया है। देखो, इसको कहते हैं अंत दीपक शब्द, आपने सुना होगा, नहीं सुना? देखो, बहुत बड़ा हमारा कमरा है, हॉल है, तो उसमें तीन दीपक लगाए, एक शुरू में, एक मध्य में और एक अंत में। तो शुरू का जो होगा दीपक, वो हम जलाएंगे तो भी पूरा प्रकाशित हो जाता है हॉल। अकेला मध्य वाला अगर हम ऑन करेंगे तो भी पूरा प्रकाशित होगा, और अंत वाला लगाएंगे तो भी पूरा प्रकाशित होता है। वैसे कोई शब्द अंत में लगा दिया जाता है और वो उसका अर्थ सब में लगा लेना, यानी वो शब्द सब में लगा लेना, हम यूज करेंगे एक बार। जैसे यहाँ लिखा है लोए सव, लिखा तो एक बार, परंतु उसके पहले चारों ही पदों में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सबके लिए वो लगा लेना, उसको कहते हैं अंत्य दीपक। और आदि दीपक यानी जैसे हमने लिख लिया सर्वश्री या श्रीमद ऐसा लिखा, और फिर आगे सबके नाम लिखे, हरेक के आगे वो सर्वश्री या श्रीमद जो कोई विशेषण लगाने, सबके आगे नहीं लगाएंगे, एक बार लगा दिया तो उसका अर्थ होता है सबके लिए वो लगा लेना, उसको कहेंगे आदि दीपक। और ऐसे मध्य वाले भी आते हैं शास्त्र में, कहीं कहीं आते हैं, उसकी भी चर्चा आती है, तो इसको कहते हैं आदि दीपक या अंत दीपक या मध्य दीपक। शब्द तो एक बार हमने यूज किया, परंतु वो सबके साथ वही शब्द लगा लेना, बार बार गाथाओं में, सूत्रों में या श्लोकों में उसको रिवाइज रिपीट नहीं करते, क्योंकि थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ हमें समझाना है ना। इसका खुलासा तो आएगा गया। उसके आगे देखो, अगले पेज पर शंका लिखी है ना, तीसरी लाइन में, ऊपर तो प्राकृत नहीं पढ़ेंगे हम। शंका क्या पूछते हैं, यह सूत्र सकारण मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता का प्ररूपण करता है, यह कैसे संभव है? शंकाकार क्या पूछता है, यहाँ तो खाली पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया और आप कहते इसमें से मंगल भी हुआ, निमित्त भी हुआ, हेतु भी हुआ, परिमाण भी हुआ, नाम हुआ भी, कर्ता भी हुआ, ये कैसा शक्य है? शंकाकार का शंका क्या है उसकी, कि यह सूत्र, ये जो मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम करता है उसका प्ररूपण करता है, यह आप अगर कहते हो तो ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल? शंकाकार का यह अभिप्राय है कि सूत्र में जबकि केवल मंगल अर्थात इष्ट देवता को नमस्कार किया है, तब उससे निमित्त आदि अन्य पांच अधिकारों का स्पष्टीकरण कैसे संभव है? ये ख्याल है, प्रश्न पहले ख्याल है, क्योंकि यहाँ तो केवल इष्ट देवता को नमस्कार किया है, तो आप कहते तो ये छह बातें बननी चाहिए, बतानी चाहिए, तो अन्य पांच बातें यहाँ बताई नहीं है, तो ये वो इसमें आ गई गर्भित है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो उसका उत्तर करेंगे, समाधान, उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यह मंगल सूत्र ताल प्रलंब सूत्र के समान देशामर्शक होने से, उसका अर्थ देखेंगे अभी, सकारण मंगलादि छह अधिकारों का प्ररूपण करता है। देखो पहले हम देखेंगे देशामर्शक किसको कहना, देश यानी एक देश, एक देश यानी पार्शल, पार्ट, तो देशामर्शक यानी उसका कोई पार्ट ही बताना, हम कहते हैं अमर्शक यानी परामर्श वगैरह कहते हैं ना, यानी कथन किया उसके किसी एक भाग का, यानी एक देश के कथन से संपूर्ण कथन समझ लेना, उसको कहते हैं वो देशामर्शक कथन से पूरी वस्तु समझ लेना। मराठी में हम कहते ता कहने से ताक भात समझना, हम शॉर्ट में कुछ भी बता देंगे और वो पूरी वस्तु समझ लेना, पूरा विवरण नहीं करेंगे फिर भी थोड़े में हम उसका इंडिकेट करते हैं, जैसे हम इसमें आए थे ना वो मंगल,
देखो हम एक उम्र के सब हमारे दोस्त मित्र सब साथ में मिलते हैं, तो मान लीजिए मेरे घर में आप लोग आए हैं, तो हम पूछेंगे साहब आप चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, तो आप चाह पियेंगे या कॉफी पियेंगे इतना पूला नहीं बोलेंगे, आप चाय या कॉफी इतना ही पूछेंगे, तो उससे तो आप समझ लेते कि मैं चाय पीने वाला हूँ, तो हाथ उठाएंगे चाय के लिए, ख्याल में है ना, ऐसी बातें होती है। तो ये पार्शल बताएंगे, या तो आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको टैक्सी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे टैक्सी, तो टैक्सी बोलने से वो टैक्सी वाला भी समझता है कि टैक्सी को नहीं बुला रहे, मुझको रोकने के लिए बोल रहे, तो ये देशम क्या कहते हैं,
देशामर्शक,
देशामर्शक
उसमें ये, नीचे, हाँ।
ये छोटे में सारी बात समझ लेना, ऐसी बात
नीचे ये प्राकृत में बहुत सारा समझा है, उसमें उसमें ये लिखते हैं प्राकृत है, नहीं नहीं वो तो संस्कृत भी है, इसमें संस्कृत भी है और उसमें उन्होंने इन्वर्टेड में जो दिखा है लिखा है वो प्राकृत है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देशामर्शक ने ये कह देंगे कि मुनि कैसे निर्वस्त है, निर्ग्रंथ है कहते ना, आचेलक्य का अचेलक्य कहा उनका, चेल चेले ने वस्त्र, अचेलक यानी निर्वस्त्र, तो क्या उनके पास खाली वो निर्वस्त्र है, फिर बर्तन रख सकते हैं क्या, कपड़ा नहीं रखे तो क्या बर्तन रख सकते, क्या गहने रख सकते, तो निर्वस्त्र एक ही शब्द बता दिया, 10 परिग्रहों में से एक ही बताया वो निर्वस्त्र है, तो एक परिग्रह का अभाव बताया, तो उन्हें वहां पर 10 ही परिग्रहों का अभाव समझना, यानी सभी बाह्य परिग्रहों का अभाव, 10 यानी 10 तो निर्मल नाम गिनाए, तो उसमें टीवी का नाम नहीं आया, रेडियो का नाम नहीं आया, तो क्या वो रख सकते, ऐसी बात नहीं है, मोबाइल का नाम नहीं आया, ख्याल है, ये बातें नहीं चलेगी, तो निर्वस्त्र कहते ही वो देशामर्शक का यहाँ उदाहरण नीचे भी प्राकृत में लिखा है, आपको पढ़ना है, देखो
वही
नीचे से पांचवी लाइन देखो, इति अत्र सूत्रे मिला, अभी ताल प्रलंब का अर्थ हम बाद में देखेंगे, पहले देशामर्शक क्या है उसको देखेंगे, देखो नीचे से पांचवी लाइन क्या है, यथा ताल प्रलंबम न कपदिति इति अत्र सूत्रे अर्थः तथा, अभी ये ताल प्रलंब की बात हम बाद में करेंगे, हम देशामर्शक क्या है उसकी बात पहले देखेंगे आगे, सकलोपि बाह्य परिग्रहो मुमुक्षूणां ग्रहीतुं न युज्यते इति आचेलक्य इति सूत्रे अर्थ इति तात्पर्यम, यानी जब हम अचेलक्य कहते हैं, आचेलक्य कहते हैं यानी निर्वस्त्र अवस्था जब कहते हैं, तो समस्त बाह्य परिग्रहों का त्याग करना चाहिए, ऐसा अर्थ उसमें से समझ लेना, ऐसा कहते हैं, यानी वस्त्र का त्याग किया और गहने रख दिए, ऐसा नहीं है तथा च उक्तम तद देशामर्शकम सूत्रम आचेलक्यम इति स्थितम, यानी अभी आचेलक्यम कहते ये देशामर्शक सूत्र है ऐसा कहेंगे, यानी क्या जब आचेलक्य कहते हैं उसका अर्थ होता है यानी दिगंबरत्व निर्वस्त्र अवस्था, ऐसी जो बताया, तो जब हम कहेंगे निर्वस्त्र तब समझना समस्त बाह्य परिग्रहों का त्याग है ना, कथन तो एक देश का किया उसमें सभी समझ लेना, इसको कहते देशामर्शक। देखो नीचे की सबसे अंतिम लाइन देखो, नीचे से दूसरी लाइन में अहवा लिखा है ना सेंटर में, अहवा यानी अथवा एकक गहणे गहणम तज्जातियान सवेसिम, एक का ग्रहण करेंगे तो उसकी पूरी समस्त जाति का उसमें ग्रहण करना पड़ेगा। अब ये ताल प्रलंब क्या है वो देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा, एक जाति का ग्रहण से सर्व जाति का ग्रहण यानी क्या, जैसे यहाँ ताल वृक्ष की बात की है, कोई भी एक वृक्ष का नाम लिया है तो उस वृक्ष के कोई फल पुत्ते वगैरह 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 जो कुछ है वो तो जो सचित्त अवस्था में ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो यहाँ नाम तो एक वृक्ष का लिया, परंतु ऐसे ही सभी वृक्षों का समझना चाहिए। जो सचित्त त्याग वगैरह कहते हैं ना, या हरि का त्याग कहते हैं, तो हरि के त्याग के लिए एक वृक्ष का नाम लिया हमने, फिर भी समस्त वनस्पति के लिए वो लागू है, एप्लीकेबल है। अब ये ताल प्रबलम पलम की बात ऊपर विशेषार्थ में समझाएंगे। देखो विशेषार्थ फिर पढ़ते हैं। जो सूत्र अधिकृत विषयों के एक देश कथन द्वारा, एक देश कथन का अर्थ समझ में है ना, उसका पार्ट ही कथन कर दिया, पार्शल कथन कर दिया, समस्त विषयों की सूचना करे। जैसे हमें आचेलक्य को देखा, निर्वस्त कहते ही समस्त परिग्रहों का त्याग समझ लेना, उसे देशामर्शक सूत्र कहते हैं। इसलिए ताल प्रबंध प्रलंब सूत्र के समान यह मंगल सूत्र भी देशामर्शक है। यानी ये जो यहाँ मंगलाचरण में ये मंगल सूत्र जो है, कौन सा, नमोकार मंत्र, वो भी देशामर्शक है। उसमें तो मंगल ने इष्ट देवता को नमस्कार किया है, परंतु उसमें अन्य भी पांच समझ लेना, ऐसा कहना चाहते हैं, ख्याल है ना। अब ये ताल प्रलंब क्या है उसकी बात करेंगे। कल्प सूत्र के कल्प्याकल्प्य नामक प्रथम उद्देश्य के प्रथम सूत्र में आपने सुना है ये नाम कभी? हाँ भाई, कल्प्याकल्प्य वगैरह कहाँ पढ़े हैं? प्रकीर्णकों में, अंगबाह्य सूत्रों में, अंगबाह्य जो है ना 14 प्रकीर्णक है, वो कल्प्य कल्पाकल्प्य कुंडरिक महापुंडरिक वगैरह बहुत सारे नाम है। इसमें इतना है, मुनियों के जो आचार संबंधी जो शास्त्र है, अभी उसका नाम कल्प्याकल्प्य है, उसकी बात नहीं है, तो मुनियों के आचार संबंधी जो शास्त्र है उसमें क्या लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही वही है, अभी वही है ना, वही तो है ये, वो खाने योग्य की बात करेंगे अभी। तो उसके प्रथम सूत्र में ताल पलंब पद आता है, जिसका भाव यह है कि ताड़ वृक्ष को आदि देकर जितनी भी वनस्पति जातियां हैं, यानी ताल वृक्ष को उन्होंने नाम लिया। जब हम कहते हैं ना वृषभादि, तो कितने तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं? सभी 24 अभी जो है वो, और कहेंगे तो सभी समस्त समझ लेना, जो वर्तमान के उनको भी, ख्याल है ना। वैसे ताल वनस्पति का नाम लिया, परंतु उसको आदि देकर सभी वनस्पति समझ लेना। अभी उसमें क्या है, उनके अभिन्न और अपक्व या कच्चे, अभिन्न ने बिना तोड़े या काटे गए, अपक्व यानी बिना पकाए हुए, और कच्चे यानी जो बहुत छोटे हैं, अभी बन ये फल फूल बहुत छोटे हैं, कैरी वो बहुत छोटी है, अर्थात सचित्त मूल पत्र फल पुष्प आदि का लेना साधु को योग्य नहीं है। यानी वे जब बिना काटे यानी अभिन्न है, वन वृक्ष पर ही है, तब तो वो सचित्त है ही है, वृक्ष के वृक्ष से जुदे हुए तो अपक्व अवस्था में वो भी सचित्त है, अचित्त नहीं हुए वो, उसको प्रासुक बनाने का विधि शास्त्र में बताए, उस तरह से उसको बनाया जाता है। और कच्चे इस तरह से जो है उसको खाना, यानी उसमें सचित्त है, तो मुनियों को सचित्त खाना योग्य नहीं है, ये बताना है। तो किसी भी वृक्ष के बिना काटे हुए या बिना पके हुए, पकाए हुए भी लेना, बाद में भी वो गर्म करके वगैरह प्रासुक बना के लेते हैं। ये हमारे यहाँ वो आए थे ना तारण जाके, कौन, चौरे जी, तात्या चौरे आए थे, तो पानी तो उनको ये चलता नहीं अपना, वो तो कुएं का वो भी प्रासुक वगैरह उबाला हुआ लेते, तो हमने वो लाया नारियल का पानी, उन्होंने बताया गर्म करना, गर्म करके मैं फिर पीऊँगा। तो ये ऐसा ही कच्चा नहीं ले, अपक्व ऐसा नहीं लेते, कोई भी मौसमी का जूस वगैरह वो भी ऐसा थोड़ा गर्म करके, जो सचित्त है उसको अचित्त बनाकर फिर उसको ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ ताल पलंब नाम तो एक ताल का लिया, परंतु उसके अनुसार सभी वनस्पतियों में ये समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सचित्त का त्याग है, तो ऐसी जो सचित्त मूल है, पत्र है, फल है, पुष्प है, उस आदि का लेना साधु को योग्य नहीं है। ये तो उदाहरण यहाँ दिया है। अकेले एक वनस्पति का नाम लिया, सभी वनस्पतियों का समझ लेना, इसको कहते देशामर्शक सूत्र। ये कहाँ से निकला? नमोकार मंत्र को आप ऐसा क्यों समझते हो कि उसमें छहों का कथन हो गया? क्योंकि वहाँ एक मंगल करने से उसमें अन्य पांच उसके अंदर गर्भित हो जाते हैं, इतना यहाँ कहना है। इस सूत्र में तो केवल ताल पलंब पद ही दिया है, फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त वृक्ष जाति, यानी वो फॉर एग्जाम्पल हो गया, उपलक्षण है ना, फॉर एग्जाम्पल हुआ ना। ताल का नाम लिया परंतु अकेले ताल को ही ग्रहण नहीं किया, बाकी सभी वनस्पतियों को ग्रहण कर सकते, ऐसा अर्थ नहीं है। और उसके पत्र पुष्पादिकों का ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार नमस्कारात्मक सूत्र भी देशामर्शक होने से मंगल के साथ अधिकृत निमित्त हेतु परिमाण और कर्ता का भी बोधक है, यानी अन्य पांच भी इस मंगल वाला जो सूत्र है, नमोकार मंत्र है, उसमें सभी गर्भित हो जाते हैं। ये अभी यहाँ है उनुक्त मंगल आदि, ऊपर तो प्राकृत है, वो गाथा के नीचे की एक लाइन छोड़कर फिर हम वहां उसे शुरू हो जाता है। उन उक्त मंगल आदि छह अधिकारों में से, छह अधिकार अभी हमने देखा ना, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। अब इन छह में से पहले क्या करेंगे? पहले मंगल का स्वरूप बताएंगे। छह करना चाहिए ना, तो मंगल क्या होता है, तो मंगल का स्वरूप पहले बताएंगे। तो वो स्वरूप बताएंगे ने क्या क्या करेंगे, तो उसमें पहले धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा मंगल का प्ररूपण किया जाता है। इतने अलग अलग पद्धति से मंगल क्या है उसको समझाएंगे। उनमें भू धातु सत्ता अर्थ में है, धातु यानी वर्ब, जैसे जानना, ज्ञान, उसमें ज्ञ है ना, ज्ञ ये धातु है, वो ज्ञान यानी जानना। तो भू धातु सत्ता अर्थ में है, सत्ता यानी होना है, तो भूत शब्द भी है ना, जो है उसको भूत कहेंगे हम, कहें ना भूयात सदा मंगलम, सबका सर्व मंगल हो जाओ, आपने सुना हुआ। तो भू धातु सत्ता अर्थ में है, इसको आदि लेकर समस्त पदार्थों की अवस्था के वाचक शब्दों का जो मूल कारण है उसे धातु कहते हैं। उनमें से मगी धातु से मंगल शब्द निष्पत्त हुआ है, यानी अलग अलग जो शब्द है, धातु होते हैं, उसमें से शब्द तैयार होते हैं। कोई भी शब्द कैसे तैयार होता है, तो उसका मूल धातु क्या है, ये तो संस्कृत व्याकरण है ना, नहीं समझे कोई चिंता नहीं है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो क्या कहना चाहते इतना तो समझ लेंगे अभी। तो ये मगी जो धातु है उससे ये शब्द तैयार हुआ है, अर्थात मगी धातु में अलज प्रत्यय जोड़ देने पर मंगल शब्द बन जाता है। उसके भी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो संस्कृत का पर्टिकुलर खास व्याकरण है। यानी मंगल शब्द कैसे तैयार होगा उसकी बात करेंगे, आगे भी और बताएंगे, हम तो पहले से समझ के आए ना, मम लाती या मंगम लाती और मम गालयती, मम गालयती, मम यानी पाप, पाप का जो नाश करे, मम गालयती, उसको मंगल कहते हैं। या मंगम यानी मंग यानी सुख, मंगम लाती, जो सुख को लाता है वो मंगल, यहाँ अलग तरीके से इसको वर्णन आता है, देखेंगे अभी हम। अब यहाँ शंका पूछते, ये ऐसा है ना, कोई भी यहाँ बात आचार्य कहेंगे तो स्वयं ही शंका उठाते हैं कि सामने वाले के मन में कौन सी शंका आएगी, ऐसा सोचकर वे जैसे प्रश्नोत्तर में वो समय ज्ञान चंद्रिका में टोडरमल जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। सामने वाला कहता है ये तो द्रव्यान योग जानकर हम आत्मा आत्मा करेंगे, ये सारा जानने की क्या आवश्यकता है, तो उसको पक्षपाती कहा, द्रव्यान योग का पक्षपाती। और उसमें जो कोई कहते द्रव्यान योग में सूक्ष्म बातें आती हैं हम उसको जानेंगे, तो उसको वहां कहा था हे सूक्ष्माभास बुद्धि, याद है कि भूल गए? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में हमने इसको पढ़ा था पूरा। तो वैसे यहाँ स्वयं शंका उठाते हैं और स्वयं उसका समाधान करते हैं। यहाँ धातु का निरूपण किस लिए किया जा रहा है? शंकाकार का यह अभिप्राय है कि यह ग्रंथ सिद्धांत विषय का प्ररूपक है, इसलिए इसमें धातु के कथन की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसका कथन तो व्याकरण शास्त्र में करना चाहिए। यह हमारा प्रश्न उनको बराबर समझ में आया है? समाधान, ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो शिष्य धातु से अपरिचित है, अर्थात किस धातु से कौन शब्द बना है इस बात को नहीं जानता है, उसे धातु के परिज्ञान के बिना, परिज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान, यानी धातु संबंधी जो ज्ञान है उसके बिना विवक्षित शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई शब्द कैसे बना ये अगर ख्याल में नहीं आता है तो खाली हम शब्द याद करने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं रहता, याद में नहीं रहता, तो वो कौन से शब्द से उसका बना है वो, ऐसा अगर ख्याल लेते हैं तो शब्द का भी अर्थ हमारे ख्याल में आ जाता है। और अर्थबोध के लिए विवक्षित शब्द के अर्थ का ज्ञान कराना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर धातु का निरूपण किया गया है। कहाँ भी है ये? कहाँ भी है ने उन्होंने अन्य कहीं ग्रंथ में से श्लोक उद्धृत किया है, उक्तम च ऊपर लिखा है ना, ऊपर ही है, इसी के ऊपर है, इसी पेज में ऊपर है, अच्छा उन्हीं ने कहा है, कहा भी है, अच्छा इन्हें ऐसा कहते हैं, क्या है कहते हैं, शब्दात् पद प्रसिद्धि पद सिद्धे अर्थ निर्णयो भवति अर्थात तत्वज्ञानम् तत्वज्ञानात् परम श्रेयः। इन्हें शब्द से पद की प्रसिद्धि होती है, हमने पहले देखा ना अक्षर और पद, फिर वो संघात वगैरह वगैरह देखा था, अक्षर इकट्ठे लिखेंगे तो शब्द तैयार होता है, जैसे हमने ढ और ग दो अलग अलग अक्षर है एक साथ लिखे तो ढ ग ये शब्द हुआ, तो हमें वो मेघ वो ख्याल में आ गए, यानी किसी अन्य पदार्थ की वहां प्रसिद्धि हुई ना शब्द से। और अनेक शब्दों को हम लिखेंगे तो वाक्य हो जाता है, जिसको यहाँ पद कहा है, तो आकाश में ढग यानी मेघ आए हुए है ऐसा हम लिखा तो उसमें पद बन गया, तो पद बन गया तो हमको कुछ भाषित हुआ, आप क्या हमें कहना चाहते हैं ये हमको अर्थ ख्याल में आ गया है ना। तो शब्दात पद प्रसिद्धि यानी शब्द से पद की प्रसिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उसके अर्थ का निर्णय होता है, हम कोई भी वाक्य सुनते हैं तो वह अर्थ हमारे ख्याल में आ जाता है। अर्थ निर्णय से तत्वज्ञान अर्थात हेयोपादेय विवेक की प्राप्ति होती है, उसका अभी हमको अर्थ ख्याल में आता है तो उसमें सच्चा क्या है झूठा क्या है, उसमें छोड़ने लायक क्या है ग्रहण करने लायक क्या है, ये सब बातें हम निर्णय कर सकते हैं, इसको विवेक कहते हैं। हे ये उपादेय की जो बुद्धि है उसको विवेक कहा जाता है, उस विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तत्वज्ञान उसी को कहा ना, और तत्वज्ञान से परम कल्याण होता है। ये क्यों सब अर्थ जानना क्यों जरूरी है, उसके लिए उन्होंने ये श्लोक लिख दिया यहाँ। समय हो चुका जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो